आज है 28 मई दिन गुरुवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश, सड़क रेल पटरियों से हटाए जाए गुर्जर आंदोलनकारी। कांग्रेस के सरकार पर हमले तेज तो नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब।
कांग्रेस ने प्रहार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन कांग्रेस को ये बात मालूम होनी चाहिए, एक साल में खास तौर से किसी सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं हो सकता।
तो मोदी और मनमोहन सिंह ने की 7RCR में मुलाकात।
मौका था ना, दस्तूर था शिष्टाचार दर्शाने का। एक साल एक दिन होने पर आप जब उसी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको बधाई देने जाने का जो तर्क दिया जाता है, ये गले से उतरना मुमकिन नहीं है।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार अमल चौधरी से। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। इसके बावजूद उन्होंने रेल मार्ग और सड़कों को बाधित कर रखा है। इससे नाराज होकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को सभी आंदोलनकारियों को वहां से हटाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को तलब किया है। अदालत ने प्रदर्शन के कारण रेलवे को हुए नुकसान की भी जानकारी मांगी है। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि सेना ने गलती से एंथ्रेक्स के नमूनों को सक्रिय अवस्था में जांच के लिए अमरीका की 9 और दक्षिण कोरिया की एक प्रयोगशाला में भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार इन नमूनों को निष्क्रिय अवस्था में भेजा जाना चाहिए था। अधिकारियों ने इसके लिए सभी प्रयोगशालाओं को सावधानी बरतने की चेतावनी जारी कर दी है और साथ ही उन्हें एहतियाती तौर पर दवा लेने के लिए भी कह दिया है। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लेटर ने संघ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा है कि इसमें जो लोग भी लिप्त हैं उनके लिए इस खेल में कोई जगह नहीं है। वहीं अमरीकी जांच अधिकारियों के अनुसार फीफा में पिछले 20 सालों से बहुत ही सधे हुए तरीकों से भ्रष्टाचार चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान फीफा ने करीब 10 अरब रुपयों की घूस ली है। वहीं यूरोपीय फुटबॉल संघ UEFA ने के महासचिव जियानी इन्फेंटोनियो ने इस पूरे मामले पर हैरत जताई। उन्होंने कहा, UEFA आज फीफा को रेड कार्ड दिखाता है। जो कुछ भी हुआ वो फीफा के लिए तो त्रासदी जैसा है ही, फुटबॉल की छवि को भी खराब करता है। इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि भ्रष्टाचार फीफा की जड़ों तक फैला हुआ है। जरूरत है कि फीफा की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से बदला जाए, जिससे असल मायने में कुछ बदलाव हो सके। UEFA के महासचिव जियानी इन्फेंटोनियो के शब्द। अधिकारियों के मुताबिक स्विट्जरलैंड की पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में फीफा के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये गिरफ्तारियां बुधवार सुबह ज्यूरिख के एक होटल से की। फीफा के अधिकारी शुक्रवार को होने वाले अपने सालाना बैठक में शामिल होने के लिए ज्यूरिख आए हुए थे। इस बैठक में संघ के अध्यक्ष सेप बाल्टर 5वीं बार अध्यक्ष चुने जाने वाले थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री एश कार्टर ने चीन को चेतावनी दी है कि वो दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण बंद करे। एशिया प्रशांत ने अपने 11 दिनों के दौरे से पहले कार्टर हवाई में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चीन ऐसा करके इलाके में सुरक्षा को लेकर जो सहमति बनी हुई है उसमें दखलंदाजी कर रहा है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार के बीच कल हुई बातचीत बेनतीजा रही। ये चौथे दौर की बातचीत थी। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि सरकार से रेल पटरियों और सड़क मार्ग को से आंदोलनकारियों को खाली करवाने को कहा है। सीधा चलते हैं जयपुर नारायण बारेट के पास। नारायण, हाईकोर्ट ने सरकार को कल शाम 5 बजे तक रेल पटरियों और सड़क मार्ग से गुर्जर आंदोलनकारियों को हटवाने को कहा था, क्या सरकार इस आदेश का पालन कर पाई है?
अभी इसकी पालना नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने उस इलाके का दौरा किया, पुलिस को मुस्तैद भी किया, सुरक्षा बलों को चौकस भी रखा, लेकिन लगता है कि ऐसा सरकार को लगा है कि इसमें बल प्रयोग में कुछ नुकसान हो सकता है। अभी हमारी रोडवेज अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि जयपुर राजमार्ग पहले की तरह ही बंद है दिल्ली मुंबई रेल मार्ग अभी बंद है। देर रात तक बड़ी तादाद में गुजर आमदारी रेल प्रोडक्ट से जमे हुए थे, लेकिन इस बीच ये भी उम्मीद है कि आज बातचीत का एक और दौर होगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो निर्णायक हो सकता है। जो गुजरों के प्रवक्ता हैं आंदोलन के हिम्मत से उनसे अभी हमारी बात हुई है। अधिकारी ने देर रात दूसरे नेताओं को इस बात के लिए मनाया कि एक बार फिर बातचीत की टेबल पे आए और शायद कोई रास्ता निकले। एक फार्मूला खुदा जा रहा है जिसके तहत सरकार नया विधेयक ला सकती है, जैसा उनके नेता कह रहे हैं, तो उससे बात बन सकती है। साथ ही अभी हाईकोर्ट ने, जैसे ही हाईकोर्ट दिन निकलना शुरू होगा, राज्य के दो बड़े अधिकारियों को तलब किया है, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने रास्ते क्यों नहीं खुलवाए हैं। रेलवे से भी हिसाब मांगा कि कितने उपचारिया रेलवे कितनी रद्द की गई है।
जी, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जो बातचीत हुई थी बेनतीजा रही थी, अब दोनों पक्षों का क्या रुख है?
कल जब बातचीत से गुजर बाहर निकले थे वो काफी गुस्से में थे और कह रहे थे कि वापस पटरियों पर लौट रहे हैं और अब इस प्रस्ताव पे कोई बातचीत नहीं होगी। सरकार का कहना था कि इससे समरसता खराब हो सकती है अगर इनका प्रस्ताव माना जाए तो। सरकार जैसे गुजर नेता कह रहे कि अब हमको ऐसे इशारे मिल गए कि सरकार एक नया विधेयक ला सकती है जिसमें उनके लिए आरक्षण कानूनी तौर पर पुख्ता होगा और उसको अदालत में चुनौती नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो शायद गुजर इस पे मान जाएंगे। तो आज हाईकोर्ट पर नजर रहेगी और इस वार्ता में क्या निष्कर्ष निकलते हैं इस पे भी सबकी निगाहें रहेगी।
जी, फिर से बातचीत करेंगे आंदोलनकारी और सरकारी पक्ष। ये थे जयपुर से नारायण बारेट। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें नारायण, हम आपसे आगे वाले कार्यक्रमों में भी अपडेट लेते रहेंगे। तो राजस्थान से निकलकर अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगी। सोनिया की बेटी प्रियंका गांधी एक दिन पहले से ही रायबरेली में है, जहां उन्होंने अमेठी में विकास की उपेक्षा को लेकर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के आरोपों पर पलटवार किया। वहीं राहुल गांधी ने केरल से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला मौका है जबकि गांधी परिवार के तीनों सदस्य एक साथ राजनीतिक मैदान में सक्रिय हैं। एक रिपोर्ट के साथ संदीप राय।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी केरल के चावकड़ में मछुआरों के बीच पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनी और उनके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश है कि कमजोर तबके की आवाज सुनी जाए, क्योंकि कमजोर तबके के लोग मोदी सरकार से खुश नहीं हैं। राहुल ने कहा,
एनीबॉडी हु इज पुअर, एनीबॉडी हु इज वीक, फार्मर्स, लेबरर्स, स्मॉल बिजनेस पीपल,
जो भी गरीब हैं, जो भी कमजोर हैं, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो इस सरकार से खुश नहीं हैं। मैंने कई बार कहा है कि सरकार के 5 या 6 दमदार दोस्त खुश हैं, बाकी भारत हैरान है कि क्या हो रहा है। हम इन मुद्दों को उठाएंगे और हम कमजोर तबके के लिए संघर्ष करेंगे। ये थे राहुल गांधी के शब्द। राहुल ने ये भी कहा कि कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि कमजोर तबके की आवाज सुनी जाए। उधर केरल से हजारों किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी की बहन प्रियंका अलग ही अंदाज में केंद्र सरकार की मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साध रही थी। स्मृति ने अमेठी के विकास को लेकर राहुल की भूमिका पर सवालिया निशान लगाया था। प्रियंका ने उसी के जवाब में स्मृति से सवाल पूछा।
एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताएं कि IIIT क्यों नहीं करा रहे हो, वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है, वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना।
स्मृति ईरानी ने प्रियंका के सवाल का जवाब देने में देर नहीं की। स्मृति ने प्रियंका को सलाह दी कि वो कोई सवाल उठाने के पहले होमवर्क करें। उन्होंने कहा,
IIIT अलाहाबाद इज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन, IIIIT अमेठी वाज एन ऑफ कैंपस सेंटर व्हिच वाज ओपन ओनली टू ग्रैब हेडलाइंस।
IIIT इलाहाबाद राष्ट्रीय संस्थान है, IIIIT अमेठी ऑफ कैंपस सेंटर था जो सिर्फ चुनाव के दौरान सुर्खियां हासिल करने के लिए खोला गया था। भले ही ये ऑफ कैंपस सेंटर हो, हम इसके सशक्तिकरण का प्रयास करेंगे जिससे शहर के लोगों को हुनर हासिल करने का मौका मिले। मेरा श्रीमती प्रियंका वाड्रा से यही आग्रह है कि आप अगली बार कोई आरोप लगाएं तो पहले होमवर्क करें। ये थे स्मृति ईरानी के शब्द। स्मृति की सलाह को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सुना होगा। वो आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सोनिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि UPA सरकार के दौरान गैर संवैधानिक अथॉरिटी के पास असल शक्ति थी। अब हर किसी की नजर ये देखने पर होगी कि सोनिया गांधी मोदी के इस बयान का जवाब देने के लिए कैसा होमवर्क करके आई हैं। संदीप राय, BBC दिल्ली।
तो सोनिया गांधी आज पहुंचेंगी रायबरेली। ये थी संदीप राय की रिपोर्ट। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सूट बूट वाले जुमले पर पलटवार किया है। मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस एक साल पहले मिली हार को पचा नहीं पा रही है। उन्होंने यूपीए सरकार में संवैधानिक सत्ता से इतर शक्ति होने केंद्र होने की बात भी की। मोदी के इस इंटरव्यू को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद से बात की और पूछा कि वो कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के हमले को किस तरह से देखते हैं।
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री डिफेंसिव पर हैं, रक्षात्मक मोड पर हैं। सूट बूट की सरकार कहकर, इस सरकार की उपलब्धियों को जीरो बताकर, इस सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, इस तरह का प्रचार करके अपना आक्रमण बढ़ाकर कांग्रेस ने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उसमें वह नितांत रूप से असफल रही है। और सरकार ने महंगाई दूर करने की बात कही थी, सरकार ने यह कहा था कि हम 100 दिनों के भीतर जो विदेशों में हमारा धन जमा है उसको वापस लाएंगे। सरकार को एक्सपोज किया है, सरकार के चेहरे पर से पर्दा हटाया है कांग्रेस ने कि सरकार ऐसा कुछ भी करने में असमर्थ रही है। और जो वो कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन नहीं आए हैं। इसका प्रमाण ये है कि प्रधानमंत्री जब मथुरा में पहली उन्होंने रैली की सरकार का एक वर्ष होने पर, तो उसमें एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। उन्होंने ये दिखाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ना आई होती और कांग्रेस की सरकार या यूपीए की सरकार ही चली होती तो एक साल में आप लोगों की कितनी बुरी हालत हो जाती। जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है, ये कांग्रेस के बढ़ते हुए हमलों का जवाब देने के लिए ये इंटरव्यू है।
नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस एक साल बाद भी अपनी हार को हजम नहीं कर पाई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
ये बात सही है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहने की आदि नहीं है और कांग्रेस ने अपना प्रहार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी गई है और अभी 1 साल बीता है। 1 साल में खास तौर से किसी सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं हो सकता, कम से कम आधा समय तो बीत जाना चाहिए, 2.5 साल तो बीतने चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो तमाम आलोचनाएं कांग्रेस की तरफ से और दूसरे प्रतिपक्षी दलों की तरफ से हो रही है, उन आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कैबिनेट प्रणाली है, वो कैबिनेट प्रणाली हमारे देश में चल रही है। पहले क्या था कि पहले एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जिसका इरादा साफ तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ था, वो हावी थी प्रधानमंत्री के ऊपर। तो कुल मिलाकर वो एक तरह से तमाम आलोचनाओं का जवाब देने के लिए बाध्य हुए हैं और मैं समझता हूं कि फिर भी उन्होंने बहुत ही समझदारी से, शालीनता से जवाब दिए हैं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद। श्रोताओं, हम नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर हमारी खास पेशकश में आज आपको मिलवाएंगे समाज के 2 अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से। मुंबई में रहने वाले विक्रम महाजन एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और वो एक कंपनी में वित्तीय सलाहकार के तौर पर काम करते हैं। बीबीसी से बात करते हुए विक्रम मोदी सरकार को लेकर खासे आशान्वित दिखे।
इस सरकार के आने के बाद एक पॉजिटिविटी आई है, हर जगह जहां भी देखिए, अखबार में, हवा में, लोगों में, सरकारी दफ्तरों में एक पॉजिटिविटी की लहर है, एक बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। ये सब नहीं था कांग्रेस के टाइम पर इतना। इनफैक्ट अखबार खोलिए तो रोज़ स्कैंडल, स्कैम्स, ये सब दिखते थे। आज की डेट में अखबार खोलिए तो कोई ना कोई नया स्लोगन ज़रूर रहता है, कोई ना कोई नई स्कीम ज़रूर रहती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो स्कीम आम आदमी को छुए, स्किल इंडिया है या डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ये सब बहुत एम्बिशियस स्कीम्स हैं, लेकिन जब ये छुएंगी आम आदमी को तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन 4 साल बचे हैं मोदी सरकार के पास, तो उसमें अगर इन सब स्कीम जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस करी हैं उस पर भी काम करें। जेटली जी ने 50,000 रुपये और बढ़ा दिए हमारे इनकम टैक्स में, वो भी रिलीफ दिया पेंशन फंड में डालने के लिए, जो एक अच्छी स्कीम है, लोगों को करना चाहिए उसके लिए। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है करना और उसी में मोदी सरकार की जीत है।
तो ये थे मुंबई से विक्रम महाजन, जो नरेंद्र मोदी सरकार को अच्छे नंबर देते हैं, लेकिन वहीं मजदूर वर्ग मोदी सरकार से थोड़ा हताश नजर आता है। पटना जिले के एक मनरेगा मजदूर चंद्रशेखर ने बीबीसी से बात करते हुए अपनी निराशा कुछ इस तरह से जाहिर की।
नरेगा में हम 2-3 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम नहीं मिलने के कारण मैं यहाँ पर पटना में आ गया हूँ। पहले काम मिलता था मुखिया के द्वारा, अब जो है सो मशीन के द्वारा काम किया जा रहा है। मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, अभी तक कुछ काम नहीं मिला। वजह यही है कि मुखिया कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी पास नहीं हुआ एमबी पास नहीं होने के कारण लेबर कोई काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले ही से पैसा रुके हुए हैं। मगर मुखिया ही बोलता है कि ऊपर से पैसा नहीं आता है तो हम कहाँ से देंगे, घर बेचेंगे कि खेत बेचेंगे। और 2014 के पीछे तो हम लोग को 11 से काम मिलते रहा है बराबर, 1 साल में कम से कम 3 महीने तक तो गारंटी मिला। काम मांगने के लिए गए तो पहले बोला कि काम नहीं है, पहले तो हम लोग बोले जाकर कि पिछले जो काम किए हैं उसका भाई पैसा दो, तो वो बोला कि अभी एमबी पास नहीं हुआ है, एमबी पास होगा पैसा आएगा तब हम लोग आप लोग को पैसा दिया जाएगा। तो हम लोग सोचे कि जब पैसे मिलवे नहीं करेगा तो हम लोग काम करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि घर में काम मिल जाता था गांव में नहीं काम मिलने के कारण तो फिर शहर सिटी तो पकड़ना ही पड़ेगा, ये परेशानी है मेरे पास। हर चीज़ में तो परेशानी होता है, पढ़ाई लिखाई में परेशानी होता है, खाने पीने में परेशानी होता है। मनरेगा के काम बंद होने से हम लोग शहर सिटी में आ गए, पढ़ाई लिखाई में बाल बच्चों का मेरे साथ हुआ, पढ़ाई लिखाई में महीना हम बच्चों को नहीं दे पाए, स्कूल छूट गया।
तो समाज का एक तबका नरेंद्र मोदी से खुश नजर आता है तो दूसरा निराश। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 रेस कोर्स पहुंचे। ये मुलाकात थोड़ी हैरान करने वाली थी, वजह ये कि सुबह मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। खबरों के अनुसार मोदी ने इस मुलाकात के लिए मनमोहन को न्योता दिया था और बाद में ट्विटर पर मोदी ने ही मुलाकात की जानकारी भी दी। एक रिपोर्ट के साथ अमल चौधरी।
नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 रेस कोर्स रोड पर बुधवार शाम अलग ही नजारा था। करीब 1 साल बाद यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिखाई दिए मुस्कुराते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए। मनमोहन सिंह मोदी के बुलावे पर ही 7 रेस कोर्स रोड पहुंचे थे। ये प्रधानमंत्री का वही आवास है जहाँ 1 साल पहले तक मनमोहन सिंह रहा करते थे और अब वो नरेंद्र मोदी का पता है। इस मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मनमोहन सिंह के साथ अपनी तस्वीर डाली और लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलकर और 7 रेस कोर्स रोड पर उनका स्वागत करते हुए बहुत अच्छा लगा, हमारी मुलाकात बेहतरीन रही। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि मुलाकात से पहले मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखा हमला किया था। मनमोहन सिंह ने अपनी चुप्पी उस वक्त तोड़ी जब ट्राई के पूर्व प्रमुख प्रदीप बैजल ने अपनी किताब में दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री को 2G घोटाले के बारे में जानकारी थी। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा,
I can say in all humility that I have not used my public office to enrich myself.
मैं विनम्रता के साथ कह सकता हूँ कि मैंने खुद को, अपने परिवार और दोस्तों को समृद्ध बनाने के लिए अपने कार्यकाल का उपयोग नहीं किया। भाजपा सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने के लिए भ्रष्टाचार की बात करती है। ये थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार उनकी अगुवाई वाली सरकार की योजनाओं को नाम बदलकर लागू कर रही है। सरकार की आलोचना के बाद जब वो शाम को प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो मोदी से काफी गर्मजोशी से मिले। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे सामान्य मुलाकात नहीं मानते। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर कहते हैं,
राजनीतिक हलकों में इस तरीके की मुलाकातों को बहुत ही स्वाभाविक या जिसको बोलते हैं कि बहुत ही शिष्टाचार भेंट नहीं माना जाता। हालांकि इनको दर्शाया जरूर जाता है, लेकिन ये न मौका था न दस्तूर था शिष्टाचार दर्शाने का, क्योंकि 1 साल 1 दिन होने पर आप जब उसी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसके बाद उनको बधाई देने जाने का जो तर्क दिया जाता है, ये गले से उतरना निश्चित रूप से मुमकिन नहीं है।
विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरह से आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, ऐसी मुलाकातों को संशय से ही देखा जाता रहेगा। भले ही प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने हाव-भाव से जाहिर करने की कोशिश क्यों ना की हो कि उनके बीच मतभेद सिर्फ मुद्दों को लेकर हैं, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं।
ये थी अमल चौधरी की रिपोर्ट।
नमस्कार भारत, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 और 8:00।
पाकिस्तान के पेशावर शहर में 1200 से 1500 हिंदू घराने आबाद हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदुओं की कुल आबादी 47,000 बताई जाती है। इस वक्त पेशावर शहर में हिंदू घराने जिस किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यही जानने की कोशिश की पाकिस्तान से उरूज जाफरी ने अपनी इस रिपोर्ट में।
ये आवाजें हैं पुराने पेशावर के मोहल्ला कालीबाड़ी के बिशनदास जी और उनके परिवार की, जो इतवार की सुबह अपने घर में बने एक छोटे से मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उनका घर कुल 2 कमरों पर जमा है, जिसमें से एक बैठक और पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा आराम के लिए। रही बात बिशनदास जी की, तो वो बाल्मीकि कास्ट से हैं, प्राइवेट शेफ का काम करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और बेटी संध्या शामिल हैं। बीवी हार्ट पेशेंट है, मगर दवा दारू का खर्च उठाना मुश्किल है। और संध्या ने कुछ साल पहले पेशावर यूनिवर्सिटी से स्टेट्स में MSc की और इसी शहर के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है। कॉन्वेंट में पढ़ने की बड़ी वजह हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच से बचना था। लेकिन क्या संध्या पाकिस्तानी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने पर खुश है? क्या वो दीगर अकलियतों के साथ सर उठाकर पेशावर शहर में काम कर रही है?
मैंने पहले अप्लाई किया था ये कॉन्वेंट से, मैंने मैट्रिक की प्रेजेंटेशन से, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने, उधर की प्रिंसिपल ने जब मेरा नाम कंफर्म किया तो कहती सॉरी इट मींस यू आर हिंदू, सॉरी भी हम आपको नहीं रख सकते। तो लेकिन ये कि अभी रिसेंटली जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वो एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट है डेफिडल्स टाउन में, वहाँ पर मैं जॉब कर रही हूँ।
संध्या को ना सिर्फ उसी के अपने कॉन्वेंट की सिस्टर मार्गरेट ने मना किया, बल्कि पेशावर के ही एडवर्ड्स कॉलेज वालों ने भी यही कसूर बताया। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करें तो कालीबाड़ी के हिंदू घराने कुछ खुशहाल या मुतमईन नजर नहीं आए। इसी मोहल्ले की मुख्तियार बीबी के एक बेटे को पतंगों के मामूली झगड़े में जान से जाना पड़ा। यहाँ भी क्रिश्चियंस ही हिंदू कम्युनिटी के सर पर सवार दिखाई दिए।
पतंगबाजी से कोई थोड़ा सा झगड़ा हो गया था तो वो तो खत्म हो गई थी बात, तो बाद में इसको किसी ने फ़ोन किया, ये ऊपर प्लाजे पे काम करता था मेरा बेटा, बैंक से आया है, तो इसने बोला थोड़ी सी बात है तो मैं जाके भाई को समझाता हूँ, सलीम मसीह को समझाता हूँ ना, भाई को समझाता हूँ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई को समझाने गया तो भाई ने उसको एकदम गोली मार दी।
इंतजार कर रही
मुख्तियार बीबी के घर वालों ने सारी जमा पूंजी कातिलों के खिलाफ केस लड़ने पर लगा दी, लेकिन कातिल फिर भी 302 के मुकदमे से साफ बाहर निकल आया। क्या हिंदुओं की कोई अपनी सभा पंचायत नहीं? इस पर पेशावर की गोरखनाथ सभा मंडल के वाइस प्रेसिडेंट किशोर कुमार बोले कि सभा तो मौजूद है जो कम्युनिटी के अंदरूनी या इंटरनल मामले देखती है, मगर ये 302 का मुकदमा है जिसका सिर्फ सरकार को इख्तियार होता है।
हमारा पंचायत सिस्टम, हमारी सभा जो है बिल्कुल जो है तो वो कुछ नहीं कर सकती। अब अगर ये ज्यादा इस बात के पीछे लगते हैं तो इन जो ये लोग हैं जो मर्डर हैं, इनके ताल्लुकात हैं पीछे, कुछ ऐसे मुस्लिम यारों दोस्तों से भी ताल्लुकात हैं जो ऑलरेडी जो है तो कल्प्रिट टाइप या गलत टाइप के लोग होंगे, शायद उनके साथ ताल्लुक है, तो फिर वो लोग भी पीछे से इन्वॉल्व होते हैं।
पेशावर शहर में हिंदू कम्युनिटी के मसाइल पर इंसानी हुकूक या ह्यूमन राइट्स वालों का रिएक्शन जानना भी जरूरी था। औरत फाउंडेशन की दबंग और साफ गोरखशंदा नास।
हिंदू कम्युनिटी जो है वो उसका हालत ये है कि एक तो छोटे ग्रुप में है, फिर जो है वो ऑलरेडी उनको इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन की वजह से शक की नजर में भी रहते हैं, और तीसरा जो है मतलब ये एक बड़ी अजीब बात है कि जो इस मिट्टी में पैदा हुए वो इक्वल पाकिस्तानी नहीं है, ये एक बड़ा मसला है। तो उसमें फिर जो है ना इनके पास अपॉर्चुनिटीज आप कह सकते हैं, दूसरा इशू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है।
रक्षंदा नाज ने शायद पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कुछ सवालिया निशान छोड़े हैं। हिंदू कम्युनिटी की महरूमियाँ दूर ना भी हो सके, अगर सुनवाई हो तो कम जरूर की जा सकती है।
तो ये थी पाकिस्तान से उरूज जाफरी की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। अमल, क्या कहते हैं आज के अखबार?
सुशीला, आज तो पहले पन्ने पर हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही छाए हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी के यूपीए सरकार के दौरान जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन पर जो असंवैधानिक ताकत वाली जो टिप्पणी की है उस पर ही सबने हेडलाइन लगाई है। वही टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि आईब्रो राइज एज मनमोहन स्लैम्स मोदी देन मीट्स हिम, मतलब कि मनमोहन सिंह ने पहले तो मोदी की आलोचना की और फिर उनसे मिलने गए, जिस पर लोगों ने काफ़ी आलोचना की है। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर को काफ़ी अलग अंदाज से उठाया। अखबार ने लिखा है कि फोकस ऑन गवर्नमेंट नॉट पास्ट MMS टू PM, यानी मनमोहन सिंह ने मोदी से कहा कि आप प्रशासन पर ध्यान दें ना कि अतीत पर। वहीं अमर उजाला ने अपनी मुख्य खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई रखी है। इन्होंने इस खबर को नहीं प्रमुखता से उठाया। उनका कहना, उन्होंने खबर लगाई कि हरिद्वार से यूपी तक अवैध खनन बदल रही है गंगा की जलधारा, कि कैसे जगह जगह पर जो खनन माफिया जो सक्रिय हैं, किस तरह से नदी के किनारे 25 से 30 फुट तक के गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस खबर को अमर उजाला ने अपनी टॉप में लिया है। वहीं साथ ही हर अखबार, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, और सभी ने जो मनमोहन सिंह की जो खबर थी उसके साथ उनका जो एक बयान है, उन्होंने बाद में उन्होंने कहा कि भले ही मैं मेरे कार्यकाल के दौरान ना ही मैंने अपने खुद को या अपने किसी जानकार को फ़ायदा पहुंचाया है, इस खबर को सभी अखबारों ने लिया है। इसमें साथ ही सबने दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी जो केंद्र सरकार की अधिसूचना को जो उन्होंने असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया है, वो भी सुर्खियों में छाई हुई। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, उसको सभी ने उठाया है। और सबसे जो एक खेल से जो बड़ी खबर है फीफा की, जो उसके साथ अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो भी काफ़ी सुर्खियों में है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए अमल आपका। और अब सुन लेते हैं खेल समाचार विदित मेहरा से।
खेलों की खबरों के साथ मैं हूं विदित मेहरा। ऑस्ट्रेलिया के कोच रह चुके ट्रेवर बेलिस अब इंग्लैंड की टीम को कोच करेंगे। ट्रेवर साल 1985 और 1987 के बीच न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेला करते थे। ट्रेवर बेलिस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और इन्होंने 58 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और कुल मिलाकर 3060 रन बनाए हैं। उनके साथ जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने उन्हें मुबारकबाद दी है, जिनमें से एक हैं श्रीलंका के खिलाड़ी महिला जयवर्धने। ट्रेवर IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े हुए थे और उसी टीम में महिला जयवर्धने खेला करते थे। उनके बारे में महिला जयवर्धने क्या कहते हैं, सुनिए।
bothered about what the media is saying, he's not too much into all that.
वो लाइमलाइट से अलग रहते हैं और मीडिया उनके बारे में क्या कहती है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे जरूरी चीज है टीम और उसके नतीजे। वो दुनिया भर में घूमे हैं और उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स निभाए हैं। उन्हें काफी अनुभव है। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ भी काफी अरसे तक जुड़े रहे, तो उनके पास काफी कुछ है सिखाने के लिए। उन्होंने ये बहुत ही अच्छा चुनाव किया है।
उधर टेनिस में फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो महिला वर्ग की डिफेंडिंग चैंपियन मारिया शारापोवा और 17 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर के मुकाबले जीत लिए हैं। 28 साल की शारापोवा ने रूस की वर्ल्ड नंबर 51 विटालिया दियाचेंको को 81 मिनट में 6-3 और 6-1 से हरा दिया। उनका अगला मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टॉसर से और शारापोवा कहती हैं कि ये मुकाबला कड़ा होगा।
हम यहाँ पिछले साल चौथे राउंड में भिड़े थे। मुझे पता नहीं कि इस बार क्या बदलेगा। वो बहुत ही कड़ी टक्कर देती हैं और उन्हें क्ले कोर्ट पर खेलने में मजा आता है और ऐसे कोर्ट में उनका गेम और निखर जाता है। ये मैच बहुत ही मुश्किल होने वाला है, पर उनके खिलाफ मेरा रिकॉर्ड काफी अच्छा है। मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगेगा और देखते हैं कि आगे क्या होता है।
IPL का शोर शराबा तो बंद हो गया, पर मुंबई इंडियंस के आइकॉन सचिन तेंदुलकर ने IPL चैंपियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में वह कप्तान के रूप में निखर गए हैं। तेंदुलकर ने कहा, रोहित ने जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी पहली बार संभाली थी, यदि उसकी तुलना आज के रोहित से की जाए तो आज वो कहीं बेहतर कप्तान है। वो अब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। खेलों में फिलहाल इतना ही।
तो खेल समाचार सुना रहे थे विदित मेहरा। इसी के साथ कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर नेताओं को राजस्थान सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही, इसके बावजूद उन्होंने रेल मार्ग और सड़कों को बाधित कर रखा है। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को तलब किया है। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि सेना ने गलती से एंथ्रेक्स के नमूनों को सक्रिय अवस्था में जांच के लिए अमरीका की नौ और दक्षिण कोरिया की एक प्रयोगशाला में भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार इन नमूनों को निष्क्रिय अवस्था में भेजा जाना चाहिए था। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लेटर ने संघ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा है कि इसमें जो लोग भी लिप्त हैं उनके लिए इस खेल में कोई जगह नहीं है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आपसे 8 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।